जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivara Dhari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Baladeva Jaya Subhadra. Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaura Hari bol. परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। पिछले रविवार हम भगवद गीता के 12वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक पाठ कर रहे थे, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम ये श्लोक। और आपको याद होगा कि पिछली बार ये चर्चा हुई थी कि भगवान की भक्ति करना ये सर्वोच्च योग पद्धति है। मोबाइल फोन सर्वोच्च योग पद्धति नहीं है, इसलिए इन्हें कृपया बंद करके रखिएगा। और भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है। भक्ति योग के कई अंग हैं, जिनका विवरण शास्त्रों में है। विविध आचार्यों ने भी इनके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं हम सबके मार्गदर्शन के लिए। ये जो बाह्य अंग हैं, जैसे कि भगवान का दर्शन करना, जप करना, कीर्तन करना, अध्ययन करना, सेवा करना, ये जितने भी भिन्न भिन्न अंग हैं भक्ति के, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु ये भक्ति के जो बाह्य कार्य हैं, तब अधिक लाभप्रद होंगे जब आंतरिक भाव भी उसी प्रकार से हो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं इन श्लोकों में। ये सारे श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया था वाराणसी में, तो ये उपदेश वैष्णवों के बीच में सनातन शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस उपदेश के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे इन समस्त श्लोकों का उल्लेख किया था। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक उन्होंने लगातार सारे श्लोक 8-9 श्लोक बताए सनातन गोस्वामी को कि मैंने तो सब वैष्णव पद्धति, वैष्णव व्यवहार आदि, वैराग्य कैसे होना चाहिए आदि इन सब का वर्णन किया। अब है सनातन, तुम्हें सुनना चाहिए कि वैष्णव कौन होता है। जो भगवान का भक्त होता है उसकी पहचान केवल बाह्य कार्यों से नहीं होती। हालांकि तिलक धारण करना, कंठी माला धारण करना, गले में जप माला होना और जप माला के ऊपर भगवान के नामों का जप करना, लोग हमें देखते हैं और पहचानते हैं कि हाँ ये वैष्णव है, ये कृष्ण भक्त है, ये तो महत्वपूर्ण है अपने आप में। परंतु असली वैष्णव केवल अपने वेशभूषा से नहीं पहचाना जाता, असली वैष्णव अपने गुणों से पहचाना जाता है। तितिक्षवाकारुणिका का सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणाः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है साधव साधुभूषणाः। जो वास्तव में साधु होते हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे सद्गुणों से संपन्न होते हैं, सद्गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं वो वैष्णव के या भक्त के आभूषण होते हैं। इस दुनिया में लोग अपने आप को अच्छी तरह से अच्छे कपड़ों से, गहनों से सजाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, ताकि वो बहुत सुंदर लगें अन्यों के लिए। परंतु भगवान की दृष्टि में हम सुंदर कैसे बन सकते हैं? केवल अच्छे वस्त्र पहन के नहीं, केवल अच्छे आभूषण और गहने पहनकर नहीं, परंतु जब ऐसे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, तब वास्तव में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर और हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह पिछली बार आपको याद होगा कि भगवान ने स्पष्ट कहा था कि मद भक्त समय प्रिय है, कि ऐसा भक्त जिसमें कि ऐसे गुण हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो इनमें से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा का मतलब है द्वेष नहीं करना। और पिछले रविवार को कई उदाहरण देकर हम ये चर्चा कर रहे थे कि द्वेष करने से कितनी हानि होती है व्यक्ति की। भक्ति की बात छोड़िए, भौतिक जीवन में रहते हुए भी यदि कोई द्वेष करता है किसी दूसरे व्यक्ति से, ईर्ष्या करता है, दूसरे के प्रगति से यदि जलन होती है किसी के मन में, तो जिसकी प्रगति हो रही है वो तो होती रहती है, लेकिन बेचारा जो जल रहा है अंदर से, उसकी हालत बुरी हो जाती है। वो जलते रहता है अंदर से, उसको दूसरे की प्रगति सहन नहीं होती है। ये तो हम सारे बाहर की दुनिया में देखते रहते हैं, हमारे सारे अखबार, हमारे पत्रिकाएं सब इस प्रकार के खबरों से भरी हुई है। इसलिए द्वेष नहीं करना ये भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री कृष्ण बताते हैं कि सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। और उदाहरण दिए थे दुर्योधन, शिशुपाल आदि के, जो बहुत द्वेष करते थे, और ऐसे द्वेष का परिणाम तो हम जानते हैं, अंत में उनके सारे वंश का विनाश हो गया। फिर हमने सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघ की चर्चा की और देखा कि कैसे द्वेष करने से दुष्परिणाम हुआ, परंतु अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अमोघ का उद्धार हुआ। फिर पृथु महाराज और इंद्रदेव के बीच में जो लीला हुई उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो इतनी अच्छी तरह से अपने चरित्र का अनुशीलन करें, इन गुणों का अनुशीलन करें, कि ये द्वेष हृदय में नहीं आए। और यदि भक्त देखता है कि मेरे हृदय में ये सारे दुर्गुण आ रहे हैं, तो उनको जल्दी से निकाल देना चाहिए, तब जाकर वास्तव में भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है। भगवान का प्रेम उसी हृदय में जागृत हो सकता है जो कि द्वेष से रहित है, द्वेष से मुक्त है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्म प्रोज्जित कर्तव्योत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। व्यासदेव जी कहते हैं कि अन्य कर्तव्य धर्मों को त्याग कर व्यक्ति को केवल इस भागवत धर्म को स्वीकार करना चाहिए। भागवत धर्म क्या चीज है? जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, जो सर्वोच्च धर्म है, ये भागवत धर्म या कृष्ण भक्ति, इसको स्वीकार करना चाहिए। अन्य समस्त धर्मों को त्यागना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जब अन्य धर्मों को त्यागने की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि माम एकम शरणम व्रज, इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं उनको त्यागना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज का अर्थ है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल मेरे शरण में आओ हे अर्जुन, केवल एकमात्र अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना, ये भागवत धर्म कहलाता है। और इसके लिए यहाँ पर व्यासदेव जी कह रहे हैं निर्मत्सराणाम सताम, ये श्रीमद् भागवत को समझना, श्रीमद् भागवत को समझ के भगवान की भक्ति के उच्चतम स्तर को पहुँचना, ये केवल उन लोगों के लिए संभव है जो कि निर्मत्सर है, जिनके अंदर मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य अर्थात वही द्वेष, ईर्ष्या, जलन अन्यों के प्रति। जब ये निर्मत्सर भाव हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर भक्ति में हम अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। भक्ति के गूढ़ और सूक्ष्म तत्वों को हम सहज ही समझ सकते हैं। एक मात्सर्य से भरे हुए हृदय में भक्ति तत्वों का जागृत होना प्राय असंभव है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति न केवल भगवान की भक्ति के पथ को समझ नहीं पाएगा, लेकिन भक्ति के अंगों को भी ठीक से नहीं कर पाएगा। उसका मन उसे इतना बेचैन करेगा कि वो भगवान की भक्ति में अपना मन स्थिर नहीं कर पाएगा। तो भक्ति के संदेश सुनने के लिए भी योग्यता ये निर्मत्सर होने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण नौवें अध्याय गीता के नौवें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, इदम् ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनु सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसि शुभात्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इदम् ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, इदम् तु ते गुह्यतमं। अब हे अर्जुन, ये गुह्यतम जो ज्ञान है, केवल गुह्य नहीं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्यतम मतलब सबसे अधिक जो गुह्य ज्ञान है। प्रवक्ष्यामि, अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें हे अर्जुन। क्यों बोल रहा हूं तुम्हें? तुम्हारी पात्रता क्या है कि मैंने तुम्हें ही चुना है इस गुह्यतम ज्ञान को देने के लिए? अनुसूयवे, असूया, असूया मतलब ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, तुम अनसूय हो। अनसूयवे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये असूया नहीं है, ये मात्सर्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो इस उपदेश को तब जब तुम श्रवण करोगे, इस ज्ञान और विज्ञान से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में जितने भी अशुभ चीजें हैं, अभद्र चीजें हैं, उनका विनाश होगा और तुम मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के संदेश समझने के लिए भी वो जो बुद्धि चाहिए, वो एक निर्मत्सर भाव से उत्पन्न हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मात्सर्य की जो भावना है, ये दुनिया में सब जगह फैली हुई है, सबके हृदय को पकड़ के रखा है इस भाव ने। वो कहते हैं कि जब वो अमेरिका पहले गए और वहां पर उन्होंने इस कौन संस्था की स्थापना की, तो अनेक लोग, विशेष करके जो तरुण और तरुणी थे, वो भक्ति से आकर्षित होकर श्रील प्रभुपाद जी की शुद्धता, उनके कीर्तन, उनके वचन आदि से आकर्षित होकर वो भक्ति में आए और अपना सर्वस्व त्याग कर वो मंदिर में रहने लगे और अपनी नौकरी छोड़े, अपनी सब कुछ छोड़कर वो आए थे। तो लोगों ने देखा कि यहाँ संस्था के मंदिर केंद्र बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रभुपाद कहते थे कि कई लोग इतने ईर्ष्यालु हो जाते थे कि ये लोग नौकरी नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते, फिर भी सुखी कैसे हैं? फिर भी इनके पास भोजन कम नहीं है, बड़े आनंद में दिखते हैं, इनके चेहरा, इनके चेहरे तो देखिए कितने हसमुख होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और सदा उदास रहते हैं, और ये लोग नौकरी नहीं, पैसा नहीं कमाते, कुछ नहीं करते, भोग नहीं करते, फिर भी सुखी हैं इतने, ऐसा क्यों? और फिर वो कहते थे कि कई ऐसे जगह घटनाएं हुई जबकि लोगों ने द्वेष के कारण इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, ये सुख का पथ फैलना नहीं चाहिए। जब प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा के ऊपर टीका देते हैं, खास करके जब ये श्लोक महाप्रभु कहते हैं, तो प्रभुपाद जी अद्वेष्टा शब्द की परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं अद्वेष्टा मतलब क्या है? अद्वेष्टा मतलब ये कि भक्ति सब जगह फैलनी चाहिए, भक्ति सबको मिलना चाहिए और भक्ति में सभी को प्रगति करना चाहिए, ये भाव। हमें ये लगता सकता है कि ये कैसे है? वो कहने लगे कि देखो, हम विदेश में गए, विदेश में कोई ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, और लोगों को पता भी नहीं था कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, गीता क्या है, भागवत क्या है, कुछ नहीं पता था। ऐसे लोगों को जो तरह तरह के पाप कार्य में लगे थे, उनको हम भगवान की भक्ति में लेकर आए और हम भारतवर्ष में लौट के आए उनको लेकर। और कितने सारे लोग निंदा करने लगे कि अरे तुमने एक अमेरिकन आदमी को सन्यासी बना दिया, अरे आपने एक विदेशी व्यक्ति को ब्राह्मण बना दिया, उसको उपवीत पहना दिया, उसको गायत्री मंत्र के जाप करने का संदेश दिया या उपदेश दिया, ये तो केवल जाति ब्राह्मणों के लिए है। सबसे ज्यादा यही हो सकता है कि वो अच्छे पुण्य कार्य करें, उन्हें अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म मिले, तब वो जाके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो प्रभुपाद कहने लगे कि ऐसी ये द्वेष भावना है कि वो क्यों भक्ति करें, हम ही भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, भगवान और भगवान के भक्ति का अधिकार सबको है, सबको करना चाहिए। सबका अधिकार ही नहीं, सबका कर्तव्य भी बनता है कृष्ण भक्ति करना। इसमें कोई जाति भेद नहीं है, देश भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है, कोई गोरा है तो नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहने लगे, कई बार लोग कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये भक्ति कैसे कर सकता, इस मंत्र का उच्चारण कैसे कर सकता है, कोई कहते हैं ये भारतीय नहीं है, इनको आपने सन्यास क्यों दिलाया, इनको आपने गायत्री मंत्र क्यों दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि भक्ति पथ को सर्वस्व सब जगह फैलना चाहिए, फैलाना चाहिए हमें। तो ये है वास्तव में अद्वेष्टा। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर गए और ब्रजभूमि में पहुंच गए तो मथुरा में आए, तो मथुरा में वहां पर एक ब्राह्मण थे, उन्होंने महाप्रभु को देखा, बहुत आकर्षित हो गए उनसे, उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने कहा कि मेरे घर में प्रसाद के लिए आप कृपया आइए, मेरा घर पावन हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और फिर वो कहने लगे कि आप जैसे ही एक सन्यासी थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी मेरे घर में आए थे और उन्होंने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर, मेरे घर में आके प्रसाद लिया और कीर्तन आदि किया यहाँ मेरे घर में। वैसे ये जो ब्राह्मण थे वो ऐसे जाति के ब्राह्मण थे जो सनोड़िया ब्राह्मण कहलाते हैं, जो कि उच्च श्रेणी के ब्राह्मण नहीं थे। हमारे देश में ये भी एक समस्या है कि जातियां तो होती हैं, लेकिन जातियों में भी और कितने भेद होते हैं, ब्राह्मणों में भी कितने उपजातियां होती हैं, फिर क्षत्रियों में भी तरह तरह के और उपजातियां, ये उच्च ब्राह्मण है, ये निम्न श्रेणी के हैं। तो विवाह जब होते हैं तो बहुत कुछ तालमेल करना पड़ता है, ये कौन से जाति का है, ये ब्राह्मण है लेकिन फिर भी ऊंचा है नीचा है, ये 96 इसका है वो और क्या कुछ है ना। तरह तरह के जाति में आज तक हम समझ नहीं पाए, कितने नए नए जाति रोज हम सुनते रहते हैं। तो ऐसे भी एक ब्राह्मण है जो इतने ऊंचे नहीं माने जाते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों के घर में ऐसी प्रथा थी कि सन्यासी नहीं जाते थे, केवल उच्च कोटि के जो ब्राह्मण कुल में वो जाते थे। तो सनोड़िया ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम तो अवश्य जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे में कहा, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। उन्होंने कहा कि धर्म साधु अपने व्यवहार से धर्म की स्थापना करता है। तो माधवेंद्रपुरी जैसे महान भक्त हैं, जो कृष्ण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो सत धर्म के मार्ग में चलने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके घर में प्रसाद लेने आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, वो तो मेरे परम गुरु हैं। सर्वश्रेष्ठ वो वैष्णव हैं, तो मैं अवश्य आऊंगा। तो सनोडिया ब्राह्मण के घर चैतन्य महाप्रभु गए और वहां पर प्रभुपाद जी फिर से बताते हैं कि भक्ति करना सबका अधिकार है, किसी को किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने जन्म से वो भक्ति के लिए अयोग्य है। नहीं, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, तथा कथित जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी देश का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी आर्थिक स्तर का हो, उसकी शारीरिक अवस्था जो भी हो, हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो भगवान की भक्ति करे। भगवान के दृष्टि से सब एक समान है, और जो भगवान के शरण में जाता है उसकी भी दृष्टि ऐसे ही हो जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो ऐसे समदृष्टि की भावना भक्त में हो जाती है, और इसलिए वो किसी से द्वेष नहीं करता कि मैं इसके यहाँ नहीं जा सकता, मैं उसके यहाँ ही जाऊंगा। नहीं, तो ऐसे समदृष्टि की भावना रखने से
हरे राम 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 हरे हरे,
बार ऐसे होता है, ये भौतिक जगत में देखा जाता है कि एक व्यक्ति को सफलता मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, किसी प्रकार का यश मिलता है, तो अन्य लोग होते हैं जो उनकी प्रसिद्धि को सहन नहीं कर पाते, उनको अच्छा नहीं लगता है कि उस व्यक्ति को सफलता क्यों मिली, भले मुझे नहीं मिले लेकिन उसे नहीं मिलना चाहिए। तो ये द्वेष भावना है। तो कई बार देखा जाता है कि भक्तों के खिलाफ भी ऐसे कई बार किया जाता है, मंदिरों के खिलाफ भी किया जाता है, परंतु ये योग्य नहीं है। जो भक्ति में होते हैं, भक्ति करते करते सारे अच्छे गुण स्वयं आ जाते हैं, और भक्त को अपने आप ही प्रसिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, परंतु भक्त ऐसे प्रसिद्धि चाहता नहीं है। और जितना ज्यादा भक्त अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता है, उसे प्रसिद्धि मिलती है। जो व्यक्ति प्रसिद्धि के पीछे भागता है, उसे प्रसिद्धि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, परंतु मन की शांति नहीं मिलती, और वो अपनी प्रसिद्धि से इतना आसक्त हो जाता है कि जब उसे वो प्रसिद्धि किसी समय किसी से नहीं मिलती तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है, बहुत द्वेष मन में उत्पन्न हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा है। परंतु जब व्यक्ति अपने प्रसिद्धि से, अपने यश अपयश से, मान सम्मान से आसक्त नहीं होता, तो कोई उसका सम्मान करे या नहीं करे उसमें फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मान से बहुत आसक्त है, तो उसके मन में ऐसा कोई बड़ा दुख नहीं है अपमान के समान या मान नहीं मिलने के समान। परंतु भक्त जो होते हैं वो हमेशा इन चीजों से मुक्त रहते हैं। माधवेंद्रपुरी का नाम तो आप सबने सुना है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण 3 बार उनके सपने में आए, उन्होंने उनको आदेश दिया गोवर्धन में, और उन्होंने गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना की गोवर्धन के ऊपर, और गोपाल जी ने उनको आदेश दिया कि जाओ मलय चंदन नीलाचल से लेकर आओ, यहाँ बहुत गर्मी है, मेरे शरीर के ऊपर लेपन करो। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन से गए जगन्नाथपुरी की ओर, जो कि बहुत दूर है वृंदावन से। चलते 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 वो जब नीलाचल पहुंचे, ओडिशा पहुंचे, तो वहां रेमुना में आए। रेमुना में उन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर गए वहां पर, लेकिन वहां उस समय केवल गोपीनाथ के नाम से जाना जाता था ये मंदिर। और वहां इस सुंदर लीला को आप कई बार सुन चुके हैं कि गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी की। चोरी की अर्थात उन्होंने एक कटोरी महाप्रसाद की अलग रखी पर्दे के पीछे, और पुजारी ने देखा नहीं। बाकी जितने भी कटोरियां थी वो उठाकर ले गए, और रात में जब पुजारी सो रहे थे तो गोपीनाथ जी सपने में आए उस पुजारी के और कहने लगे कि देखो वहां बाजार में विश्राम कर रहे हैं एक सन्यासी जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी, तो उनके लिए मैंने खीर की कटोरी, मेरा महाप्रसाद छुपा के रखा है पर्दे के पीछे, मेरे माया के कारण तुम समझ नहीं पाए इस बात को, तो उठो स्नान करके जल्दी से वो खीर ले जाओ माधवेंद्रपुरी के पास। तो आश्चर्यचकित होकर ये पुजारी उठे और देखा कि वाकई वो खीर की कटोरी वहां थी, और बड़े हर्षित होकर वो ढूंढने गए कि कहां है वो सन्यासी, कहां है वो भक्त। पुकारते गए, माधवपुरी नाम के कोई सन्यासी है यहां पर? उनको बड़ा आनंद हुआ कि कितने महान भक्त हैं ये, कि भगवान ने स्वयं उनके लिए खीर चोरी की है। उनके मन में द्वेष नहीं हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और जब माधवेंद्रपुरी को उन्होंने वो खीर दी तो माधवेंद्रपुरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भाव विभोर होकर, प्रेमाविष्ट होकर वो गिर पड़े। तब वो पुजारी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इनके वश में क्यों आए हैं, ऐसे कौन से गुण थे माधवेंद्रपुरी के अंदर जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए चोरी की थी। तो उन्होंने सोचा कि भगवान का निर्णय जो है वो यथोचित था, अर्थात उचित था, वो भगवान ने सही लिया, सही व्यक्ति के लिए उन्होंने चोरी किया है। तो माधवेंद्रपुरी ने वो खीर खा ली। खीर का सेवन करने के बाद जो मिट्टी के पात्र को भी उन्होंने तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े बनाए और अपने थैली में रख दिए, रोज थोड़ा थोड़े वो मिट्टी वो खा लेते थे, क्योंकि स्वयं भगवान का स्पर्श हुआ था, भगवान ने उस पात्र को चोरी कर ली थी। लेकिन तुरंत माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि अब मैं यहां रहूंगा तो लोग जान जाएंगे कि मेरे कारण भगवान ने खीर चोरी की है, और ये पुजारी जाके तो सबको बताने वाले हैं, घोषणा करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, अच्छी चीज नहीं होगी, क्या होगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, तो ये ठीक नहीं है, तो मुझे यहां से निकल जाना होगा। देखिए ऐसे सोच विचार आजकल देखा जाता है, अरे यहां प्रसिद्धि मिलेगी तो भाग, यहां से निकल जाओ, यहां नहीं रहना है। लोग अपना फोटो अखबार में छपवाने के लिए क्या नहीं करते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं, किसी न किसी हालत पे लोगों को प्रसिद्धि चाहिए, मान अपमान चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए। परंतु माधवेंद्रपुरी दूर भाग रहे थे प्रतिष्ठा से, और जल्दी से तुरंत सुबह होने के पहले ही वो निकल गए रेमुना से, और तेजी से चलते चलते जगन्नाथपुरी की ओर चले गए। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि माधवेंद्रपुरी जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके गुण ही ऐसे होते हैं कि जितनी तेजी से और जितना दूर वो भागते हैं प्रसिद्धि से, उतनी ही तेजी से प्रसिद्धि उनके पीछे भागती है। और उनके जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले उनकी खबर पुरी पहुंच गई थी, तो जैसे वो पहुंचे वहां तो सभी लोग जान गए कि माधवपुरी नाम के सन्यासी हैं जिनके लिए रेमुना में गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की है। तो वहां जाके वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, यहां से भी मुझे निकल जाना होगा, लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं यहां सेवा करने आया हूं, गोपाल जी का आदेश था, तो गोपाल जी का आदेश मुझे पूर्ण करना चाहिए। यदि केवल मुझे प्रसिद्धि मिल रही है इसलिए मैं यहां से भाग के चले जाऊं तो गोपाल जी की सेवा नहीं होगी। तो देखिए, ये दूसरी बात है भक्तों की। वो चाहते हैं कि ठीक है, हालांकि प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती थी माधवेंद्रपुरी को, वो वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा मेरे इच्छाओं से श्रेष्ठ है, जो भगवान चाहते हैं मुझे वो करना चाहिए, न कि मुझे जो चाहिए मुझे करना है। नहीं, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए परंतु भगवान को चंदन चाहिए, इसलिए चंदन प्राप्त करने के लिए जो उचित है मुझे वो करना होगा, और चंदन प्राप्त करने के लिए मुझे जगन्नाथपुरी में रह के प्रसिद्धि का सामना करना होगा, तो वही सही। तो माधवेंद्रपुरी बिल्कुल निराशक्त थे। प्रसिद्धि आए तो ठीक है, भगवान की सेवा के लिए जो उचित है उन्होंने स्वीकार किया। और वहां भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं कि अन्य लोग ऐसे महान भक्तों की निंदा करते हैं, कभी कभी वो नहीं देख पाते कि एक ऐसे महान भक्त जैसे माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपना ही उदाहरण देकर कि जब वो आए अमेरिका से, इतना कष्ट प्रभुपाद जी ने सहन किया, 70 साल की आयु पर वो गए, जिस उम्र में साधारण व्यक्ति तो घर में रह के टेलीविजन देखते हैं और ऐसे ही अपना समय बिताते हैं, ऐसे आयु में प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़ के वो अमेरिका गए, उनके जेब में केवल 35 रुपए, और कहां खाएंगे कहां रहेंगे अमेरिका में, ऐसे नए देश में जहां ठंडी बहुत है, उनको कुछ पता नहीं था। एक मालवाहक जहाज में गए, हृदय का दौरा 2 बार पड़ गया उनको समुद्र में जाते हुए, फिर भी प्रभुपाद जी आगे चलते गए। और उनके पास एक छोटा सा टाइपराइटर था, छोटा नहीं, उस जमाने में थोड़ा बड़ा होता था, और उन्होंने थोड़े लिखे हुए ग्रंथ थे और पत्रिकाएं थीं, और एक यंत्र था जिसमें वो बोलते थे, फिर बोलने से फिर वो सुनकर फिर उसको टाइपिंग किया जाता था, डिक्टाफोन कहते हैं ऐसे यंत्र को। तो जब प्रभुपाद जी वहां गए थे, वो सोच रहे थे कि इन ग्रंथों को बेचकर थोड़ा धन मिलेगा, उस धन से मैं थोड़ा कुछ भोजन खरीद के खाऊंगा। प्रभुपाद जी के तो कोई नौकरी तो कोई नहीं थी वहां, न कोई ऐसे पहचान के लोग थे जिनके घर में जाके वो रहें खाएं पिएं, किसी की पहचान नहीं थी वहां पर अमेरिका में। सोचिए, 40 साल पहले की बात है, 70 साल के आदमी जा रहे हैं बिना कोई जान पहचान के, केवल 35 रुपए जेब में रख के, केवल भगवान के ऊपर और अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रख के वो गए, और वहां जाके ऐसे लोगों के बीच में रहते थे जो बिल्कुल असंस्कृत थे, उनके अंदर संस्कार बिल्कुल नहीं थे, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले, कोई शराबी थे, कोई ड्रग्स लेते थे, और लड़के लड़कियों के बीच में खुले संबंध थे। ऐसे वातावरण में 70 साल के सन्यासी उनके बीच में जाके रहे, हम सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार के कार्य को शुरू किया अमेरिका में जाके। और फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, प्रभुपाद की किताबें, उनके टाइपराइटर और उनका डिक्टाफोन चोरी हो गए। अब उनके पास कुछ नहीं था, तो वो लिखते हैं अपनी डायरी में कि मैं इतना निराश हो गया कि अब क्या किया जाए, मैंने सोचा कि मुझे वापस भारत जाना चाहिए, और मैं जो कंपनी है शिपिंग कंपनी वहां उनके दफ्तर में गया भी, और मैंने तारीख भी देखी कि किस तारीख पर जहाज चल रही है वापस, और मैं टिकट लेने ही वाला था वापस जाने के लिए उसी कंपनी से, लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरे गुरु महाराज के आदेश का मैंने स्मरण किया कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि अमेरिका जाके अमेरिका अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाना चाहिए, तो फिर से मैं रहेगा यहाँ पर और आगे चल के भी प्रभुपाद जी को अनेक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। प्रभुपाद लीलामृत इस ग्रंथ को पढ़ के आपको पता चलेगा कि कितने यातनाएं प्रभुपाद को सहन करने पड़े भगवान कृष्ण के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए। और इतना सब होकर जब भक्त बने, अनेक अनेक भक्त हुए और प्रभुपाद जी यहाँ लेकर उनको आए भारत में, उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग प्रसन्न होंगे कि अरे विदेश में जाके विदेशी लोगों को अपना धर्म समझाकर उनको परिवर्तित किया है, उनको कृष्ण भक्त बनाया है, बहुत सारे लोग प्रसन्न होंगे। परंतु प्रभुपाद जी ने देखा, हाँ थोड़े लोग तो प्रसन्न थे, आश्चर्यचकित थे, परंतु ऐसे कई लोग थे जो उनकी निंदा करने लगे कि अरे क्या किया है, हमारे धर्म को खराब कर दिया है। वृंदावन में भी ऐसे कई अफवाहें फैलाने वाले भी लोग हैं। एक साल पहले ऐसे हुआ कि थोड़े लोग कहने लगे कि 200-300 साल पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुक्म जमाया और वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से और व्यापार या व्यवसाय के माध्यम से उन्होंने सारे देश को वश में कर लिया। अब यहाँ विदेशी आए हैं, धर्म के नाम पर आए हैं, अब वो हमारे सारे देश को कब्जा कर लेंगे। तो वृंदावन में पूरा बड़ा उन्होंने एक खबर ये कर दिया, एक उत्पात कर दिया और हम लोगों को उसका सामना करने के लिए बहुत कठिनाई हुई। सबको समझाना पड़ा कि देखो आपके लिए, हम सबके लिए कितने अभिमान की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए कि ये लोग ऐसे जीवन शैली को, बुरे जीवन शैली को छोड़कर यहाँ पे कृष्ण भक्ति करने आए हैं, आपके वृंदावन में, हमारे वृंदावन में आए हैं, तो उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि उनसे द्वेष करना चाहिए कि आप लोग क्यों भक्ति कर रहे हो। वास्तव में ऐसे भावना के कारण हम देखते हैं कि सनातन धर्म का गठन हुआ है। सबसे बुरे दुश्मन जो धर्म के हैं, सनातन धर्म के, वो अन्य लोग नहीं है, अंदर के ही हैं सब, जो द्वेष के कारण अन्यों को रोक दिया। धर्म परिवर्तन भी होते गया, क्यों? किसी ने की छाया को, दूसरे यवन की छाया को स्पर्श किया, वो अभी उसको बहिष्कृत कर दिया। तो ऐसे द्वेष भावना के कारण सनातन धर्म जो है उसका गठन होते गया और आज हम देख रहे हैं कि पुण्य भूमि भारत में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं। क्यों? यहाँ जो कि जहाँ जिस भूमि में श्री कृष्ण ने अवतार लिया, श्री रामचंद्र ने अनेक अनेक अवतार प्रकट हुए, वहां पर केवल द्वेष के कारण ये सनातन धर्म जो है वो इतना फैल नहीं पाया है। तो ठीक है, ऐसे चलते चलते प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट उठाया और उन्होंने देखा कि यहाँ आकर फिर भी लोग ऐसी निंदा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे तपस्या करने के बाद प्रभुपाद जी आए थे और उन्होंने ये संस्था की स्थापना हम सबके लिए की है ताकि इसका लाभ हम यहाँ उठाएं। तो माधवेंद्रपुरी ने वहां बहुत कष्ट उठाया भगवान के लिए। उन्होंने सोचा अब मैं इस कर्पूर और चंदन को लेकर जाऊंगा वापस वृंदावन, गोपाल जी के शरीर पे मैं लेप लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए भी लोग छोड़ते नहीं है, द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, इसलिए वहां पर तो अच्छे भक्त थे, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी माधवेंद्रपुरी के लिए और थोड़े सैनिक सिपाही भी साथ में भेजे ताकि कोई व्यक्ति आके डकैती भी करे तो उनकी रक्षा हो, इतना महंगा चंदन जो है चोरी न हो जाए। और फिर माधवेंद्रपुरी वापस चले आए। वापस लौटते समय रेमुना आए। रेमुना में पुजारियों ने उनको देखा, बहुत प्रसन्न हुए और वहां दोबारा गोपाल जी सपने में आए माधवेंद्रपुरी को, और उन्होंने कहा कि अब वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रास्ते में बहुत खतरे हैं, मुझमें और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो भी चंदन तुम लाए हो वो वहां पर रेमुना में गोपीनाथ के शरीर में ही लगाओ। तो बड़ी प्रसन्नता से फिर माधवेंद्रपुरी ने वहां के पुजारियों और ब्राह्मणों को एकत्र किया और सारा चंदन घिसा घिसा के फिर वहां गोपीनाथ जी को लेप लगाया। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं, इस माधवेंद्रपुरी के उदाहरण से हम ये सिखलाना चाहते हैं कि कैसे भक्त को समझना चाहिए कि प्रसिद्धि यश इत्यादि इनके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना चाहिए, अपने आप आते रहेंगे। जितना हम प्रयास करेंगे इन चीजों के लिए उतना ही द्वेष अन्यों के हृदय में बढ़ेगा और फिर और संघर्ष बढ़ता रहता है। लेकिन जिसके मन में ये अभिलाषा नहीं है प्रतिष्ठा आदि के लिए, उसके प्रति द्वेष करने वाले बहुत कम होंगे। ये संसार ही द्वेष का है। प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण दिया करते थे, जो केकड़े होते हैं क्रैब्स, उनको यदि एक टोकरी में रखा जाए तो टोकरी को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कई बार को पशुओं को ले जाते हैं कतल खाने में तो बांध कर ले जाते हैं या बंद इसमें ले जाते हैं, परंतु केकड़े जो होते हैं उनको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण तो आप जानते हैं। तो यदि एक केकड़ा भी ऊपर जाने का प्रयास करे, खुला है वो आसानी से जा सकता है, पर दूसरा केकड़ा सोचेगा कि अरे ये तो निकल के जा रहा है, वह उसे क्यों मुक्त होना चाहिए। और दूसरा केकड़ा ये नहीं सोचता कि मैं भी तो निकल के जा सकता हूँ, हम सब निकल के जा सकते हैं, हम सब मुक्त हो सकते हैं। केकड़ा सोचता नहीं, उसे नहीं जाना चाहिए, मैं भले यही रहूं लेकिन उसे हम जाने नहीं देंगे। तो जितने भी बाकी के केकड़े हैं वो जाके उसको नीचे खींच देते हैं, तो वो बेचारा नीचे आ जाता है। फिर दूसरा केकड़ा सोचता है, जब दूसरे सब सो गए लगता है हम निकल जाते हैं, फिर कोई केकड़े एक आंख खोला लेकर देख रहा होता है कि कौन ऐसे निकलने वाला तो नहीं है ना, वो आर वो निकल गया, चलो उसको भी खींचो। तो सारे दुनिया में यही चलता है, यही चलता है। इसलिए भक्तों को इन चीजों से बहुत बच के रहना चाहिए। ये दुनिया की बीमारी है, और क्योंकि भक्त लोग तो आखिर वैकुंठ से तो टपक के नहीं पड़े हैं, दुनिया से ही आए हैं, हम भी बाहर के दुनिया से हम भक्ति करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो बाहर के दुर्गुणों का स्पर्श हमारे हृदय से कभी कभी हो जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही हम देखते हैं कि दूसरों की प्रगति से हमें कुछ तकलीफ हो रही है, तो हमें आके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर बुरे विचार उसको निकालिए, दूसरे के प्रगति में हमें आनंद लेना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो महाराज प्रताप रुद्र वहां के राजा थे, वो उनसे मिलना चाहते थे, बार बार दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हर बार चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी एक राजा का संग कैसे कर सकता है। एक राजा जो होता है वो विषयी व्यक्ति होता है, विषयी अर्थात जो भोग करने में रत होता है, केवल रुपए पैसे के मामलों में वो मग्न रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से मैं एक सन्यासी होकर कैसे उसका संग करूं, मैं नहीं करूंगा। महाराज प्रताप रुद्र बहुत ही दुखी हो गए, यहां तक कि उन्होंने भक्तों से कहा कि महाप्रभु यदि मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मेरे राज्य का, मेरे धन का, मेरे परिवार का, मेरे ऊंचे जन्म आदि का क्या उपयोग है, मैं इन सबको त्याग दूंगा और मैं जाके एक भिक्षुक बन जाऊंगा। तो सारे भक्त लोग घबरा गए, कह रहे नहीं नहीं, ऐसे अच्छे राजा छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा प्रजा का, तो आपको होना चाहिए। नहीं नहीं, तो फिर वो महाप्रभु के पास गए और बड़े नम्रता से जाके महाराज प्रताप रुद्र की ओर से दो शब्द बोलने जा रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि बहुत अच्छे भक्त हैं, हालांकि राजा है लेकिन भक्त है, केवल रुपए पैसे वाले आदमी नहीं है ये, और आपके प्रति इनके हृदय में बहुत अच्छी श्रद्धा है, प्रेम है आपके प्रति। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने बात नहीं मानी भक्तों की, उदाहरण देना चाहते थे। फिर एक बार जब महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान थक कर एक उद्यान में आके शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो सारे भक्तों ने मौका देखा कि हाँ यही ठीक है। उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र से कहा कि जाओ अब यहाँ जाके महाप्रभु की सेवा करो, जब सेवा करोगे तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। वो अभी प्रेमावेश में है, वो पहचान नहीं पाएंगे, बाह्य चेतना में नहीं है, वो अभी आंतरिक दुनिया में है, इसलिए ऐसे समय तुम जाके उनकी पाद सेवन करो, चरणों की सेवा करो। तो महाराज प्रताप रुद्र वहां पर गए और वहां जाकर एक साधारण आदमी का वेश पहनकर गए, अपने राजा का ठाठ वगैरह सब छोड़ दिया, नौकर चाकरों को पीछे छोड़ दिया, अपने शानदार रेशम के कपड़े छोड़ दिए, साधारण वस्त्र पहन के एक साधारण व्यक्ति की तरह है वो गए। जब महाप्रभु वहां शयन कर रहे थे तो महाराज प्रताप रुद्र ने धीरे धीरे से महाप्रभु के चरण कमलों को दबाना शुरू किया, थोड़ा सेवा करना शुरू किया, और उस समय अनेक श्लोक बोलने लगे श्रीमद् भागवत के, और विशेष करके जो गोपी गीत है इनके श्लोक जो कि जयति ते धिकम से शुरू होता है, ऐसे सुंदर श्लोक एक के बाद एक बोलते गए। महाप्रभु सुन रहे थे ये भागवत के सुंदर श्लोक, उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, और वो कहने लगे बोलो बोलो और बोलते रहो और बोलते रहो, ये तुम अमृत का पान मुझे करा रहे हो, रुकना नहीं और आगे बढ़ो। उस समय महाप्रभु को पता नहीं था कि ये राजा है या कौन है। तो फिर महाराज प्रताप रुद्र बोलते गए, अंततः जब तब कथामृतम श्लोक तक पहुंचे तो महाप्रभु उठ गए बड़े आनंद से, और उन्होंने आलिंगन किया महाराज प्रताप रुद्र का और कहा भूरिदा भूरिदा भूरिदा, अर्थात बहुत उदार व्यक्ति, तुम ही भूरिदा हो कि क्योंकि तुमने मुझे कृष्ण कथा के अमृत का पान कराया है, जिससे कि हृदय के अंदर जो भी त्रिविध ताप है, जो दावानल जल रहा है, उसका नाश हो सकता है, तो तुम ही सारे दुनिया का कल्याण करने वाले हो, क्योंकि कृष्ण कथा की वर्षा तुम सब जगह कर रहे हो, जिससे कि सबके हृदय में ये दावानल बुझ जाए। और आलिंगन किया महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र का। तो आइए कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में हम पढ़ते हैं। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये वास्तव में बंगला में है लेकिन हम हिंदी उच्चारण करेंगे ताकि आप सब समझ जाएं। पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिलो, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिलो। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा ऐसी क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिलो, महाराज प्रताप रुद्र के पूर्व सेवा को उन्होंने ध्यान में रखा, महाप्रभु भूले नहीं। हालांकि उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को मिलने से इनकार किया था, फिर भी अपने मन में वो ध्यान रख रहे थे कि हाँ ये महाराज प्रताप रुद्र का भाव क्या है, कितनी सेवा उन्होंने की है, जितने भी मेरे भक्त हैं एक एक ही उन्होंने सेवा की है व्यक्तिगत रूप से, और इसलिए बिना महाराज प्रताप रुद्र को पूछे ही उन्होंने आलिंगन किया। এই দেখো চৈতন্যের কৃপা মহাবল, তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল। চৈতন্য মহাপ্রভু কি কৃপা ই কিতনি বলবান হ্যা, বিনা পুছে হুয়ে ভি চৈতন্য মহাপ্রভু নে উস রাজা কা জীবন সফল করা দিয়া। প্রভু বলে কে তুমি করিলা মোর হিত, আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ লীলামৃত। প্রভু বলে, প্রভু নে কহা কে তুমি করিলা মোর হিত, তুম কন হো আকে তুমনে মেরা হিত ইস প্রকার সে কিয়া। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ লীলামৃত, অচানক তুম আয়ে আর আকর মুঝে কৃষ্ণ লীলা কে অমৃত কা পান তুমনে করায়া। রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস, ভৃত্যের ভৃত্য করো এই মোর আশ। জব মহাপ্রভু নে রাজা প্রতাপ রুদ্র সে পুছা কি তুমনে অচানক আকে বিন বুলায়ে মুঝে কৃষ্ণ লীলা কে অমৃত কা পান করায়া হ্যা, তুম হো কন, আপনি তুমারা পরিচয় ক্যা হ্যা? তো মহারাজ প্রতাপ রুদ্র নে কহা মেয়ে রাজা হুঁ, মেয়ে নীলাচল কা মহারাজা হুঁ, বিশ্ব সম্রাট হুঁ, এসে নে কহা। আপনা পরিচয় কেসে করায়া মহারাজ প্রসাদ প্রতাপ রুদ্র নে? আমি তোমার দাসের অনুদাস, ভৃত্যের ভৃত্য করো এই মোর আশ। রাজা মহারাজা সব ভুল গে, মে কন হুঁ, মে আপকে দাসো কা দাস হুঁ। আর মে ক্যা চাহতা হুঁ আপসে, ভৃত্যের ভৃত্য করো এই মোর আশ। আপকে সেবকো কে মুঝে সেবক আপ বনাইয়ে, কেবল ইহি একমাত্র মেরি আশা হ্যায়। তো রাজা কি আশা ইয়ে নহি থি কি মেরা রাজ্য বড় যায়, জো পাস ওয়ালা রাজ্য হ্যায় উসকে উপর ভি মে কাবু কর লু, আর মেরা ধন বড় যায়। পূজা লাভ প্রতিষ্ঠা কি কামনা নহি কি, উনহোনে কহা মুঝে আপকে কেবল দাসো কে দাস বননা হ্যায়। আর প্রভুপাদ জি বতলা রহে হ্যায় কি ইয়ে ভক্ত কি পরীক্ষা হ্যায়। জব ভক্ত কো মৌকা মিলতা হ্যায় ভগবান সে কুছ মাঙ্গনে কে লিয়ে, ও ক্যা মাঙ্গতা হ্যায়, ইসসে হম অনুমান লগা সকতে হ্যায় কি কিস স্তর কা ও আদমি হ্যায়। যদি ভগবান কে সামনে আকে ব্যক্তি কহতা হ্যায় ধনম দেহি, রূপম দেহি, প্রতিষ্ঠা দেহি, বিজয় দেহি, তো ফির হম জান সকতে হ্যায় কি ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহি হ্যায়। জব প্রহ্লাদ মহারাজ কে সামনে ভগবান নরসিংহদেব প্রকট হুয়ে, উনহোনে পুছা কি প্রহ্লাদ তুমে ক্যা বরদান চাহিয়ে, তো প্রহ্লাদ নে কহা নহি মুঝে আপসে কুছ নহি বরদান চাহিয়ে, কেবল এক হি বরদান চাহিয়ে কি আপকে শুদ্ধ ভক্তো কি সেবা করনে কা মৌকা আপ দিজিয়ে। উসি প্রকার সে ধ্রুব মহারাজ কে সামনে জব ভগবান প্রকট হুয়ে, ধ্রুব মহারাজ নে ভি এসে হি প্রার্থনা কি ভগবান সে কি মুঝে উস দুনিয়া কা কুছ নহি চাহিয়ে, মুঝে কেবল আপকে ভক্তো কা ভক্ত বননা হ্যায়, আপকে সেবকো কা সেবক মে বননা চাহতা হুঁ। ঠিক উসি প্রকার সে মহাপ্রকাশ লীলা কে দৌরান জব চৈতন্য মহাপ্রভু নে শ্রীধর খোলা বেচা সে পুছা কি শ্রীধর ইয়ে বতাও তুমে ক্যা চাহিয়ে, মে দুনিয়া কা কুছ ভি তুমে দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হুঁ, তুম ইতনে গরীব হো, তুমে পহনে কে লিয়ে কপড়ে ঠিক নহি হ্যায়, তুমারে ঘর কা জো ছত হ্যায় উসে পানি টপকতে রহতা হ্যায় জেসে কি রাধা গোকুলানন্দ মন্দির মে হোতা হ্যায়, তো তুম পুছো মে ক্যা দে সকতা হুঁ তুমকো। মহাপ্রভু ভগবান হ্যায় না, তো ও জানতে থে কি 500 সাল বাদ বেলগাম মে মন্দির মে হোনে ওয়ালা হ্যায়, তো বোলে। তো শ্রীধর নে ক্যা কহা, শ্রীধর নে ইয়ে নহি কহা কি মেরে ঘর কি মরম্মত করো, মুঝে নয়ে আচ্ছে রেমন্ড স্যুট দে দো, উনহোনে কহা মে কেবল আজীবন, আজীবন হি নহি নিরন্তর জন্ম জন্মান্তর সে মে কেবল আপকে সেবকো কা সেবক হি রহনা চাহতা হুঁ, মুঝে অর কুছ নহি চাহিয়ে। অর এসে কই উদাহরণ হ্যায়, জিতনে ভি এসে মহান ভক্তো কে উদাহরণ দেখেঙ্গে, জব ভগবান নে উনসে কুছ পুছা তো উনহোনে ইয়হি মাঙ্গা। বল্কি মহারাজ কুলশেখর জো হ্যায় অপনে মুকুন্দ মালা স্তোত্র মে জব ভগবান সে প্রার্থনা করতে হ্যায় তো ও দো ভৃত্য ইয়া দো দাসানুদাস সে ও সন্তুষ্ট নহি হোতে হ্যায়, सात बार भृत्येर भृत्येर भृत्य 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 से सात बार कहते हैं कि आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का मैं दास होना चाहता हूं। ऐसी भावना तो लोग यहां बाहर की दुनिया में कर ही नहीं सकते हैं। बाहर की दुनिया में सेवक बनना मतलब ये निम्न श्रेणी का एक पद होता है, परंतु भक्ति की दुनिया में ये श्रेष्ठ पद होता है, भगवान और भगवान के भक्तों का सेवक होना। महाप्रभु ने भी बतलाया है हमें दासानुदास होने का प्रयास करना चाहिए, परंतु बाहर की दुनिया में प्रथा है बॉसानुबॉस होने का, है ना? कैसे आदमी बॉस बने, कैसे आदमी नंबर एक बने। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र इतने बड़े राजा थे, इतने धनी थे, प्रभावशाली थे, फिर भी उन्होंने कैसे अपनी पहचान कराई, इसलिए महाप्रभु प्रसन्न हुए। महाप्रभु की कृपा महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर क्यों हुई? उनके ऐसे गुण देखकर। भगवान हमारे भौतिक गुणों को देखकर कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। किसी के पास बहुत सौंदर्य है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत बलवान है, किसी के पास बहुत धन है, ऐसे चीजों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान केवल ऐसे वैष्णव गुणों से प्रसन्न होते हैं, जैसे कि महाराज प्रताप रुद्र के साथ था। राजा है नो ज्ञान को भू न कोई लो प्रकाश, अंतर सकले जाने बहिरे उदास। अच्छी तरह से जानते थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कि ये राजा है, केवल अंदर उस ज्ञान को रखा लेकिन बाहर से उदास, मानो कि उनको पता ही नहीं है, ऐसे व्यवहार किया। प्रताप रुद्र भाग्य देखी देखी भक्त गणे, राजे प्रशंसे सबे आनंदित मने। प्रताप रुद्र भाग्य देखी, जब प्रताप रुद्र का ये महाभाग्य भक्तों ने देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की है महाराज के ऊपर, राजा प्रशंसे सबे आनंदित मने। जितने भी भक्त वहां पर उपस्थित थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित उनका मन हो गया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शुरुआत ही करते हैं तात्पर्य का इस लाइन से कि ये वैष्णव के लक्षण होते हैं, कि वो किसी अन्य भक्त से ईर्ष्या नहीं करता है, जबकि वो भक्त भगवान या भक्तों की कृपा प्राप्त करता है। और एक जो शुद्ध वैष्णव होता है वो बहुत प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि किसी दूसरे भक्त को भगवान की कृपा मिल रही है और वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रभुपाद जी और कई सुंदर बातें बताते हैं। तो इससे हमें जान लेना चाहिए कि वास्तव में जब हम अन्य भक्तों को देखते हैं हमें प्रसन्न होना चाहिए, देखो ये भी भक्त अभी भक्ति में आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, हमें उनके सेवक बनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनसे पहले भक्ति में आया हूँ इसलिए मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं 10 साल से 20 साल से भक्ति में हूँ, अब ये व्यक्ति अभी अभी आया है तो उस व्यक्ति को मेरी सेवा करनी चाहिए, नहीं, ये महाप्रभु का सिद्धांत नहीं है। महाप्रभु का सिद्धांत है कि जो जितना आगे बढ़ा हुआ है वो उतना ज्यादा वो अन्यों की सेवा करने का अभिलाषा रखता है। तो सच्चा भक्त वो है जो हमेशा अन्यों का सेवक बनना चाहता है, ये सच्चे भक्त की पहचान है, ये लक्षण है। और जब भक्त देखता है कि अरे देखो ये भक्त कितना अच्छा कीर्तन करने सीख रहा है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है, वो ये नहीं सोचेगा अरे अब ये भी अच्छा कीर्तन करेगा तो फिर क्या होगा, मैं भी तो कीर्तन करता हूँ तो ये भी अच्छा कीर्तनीय बन जाएगा तो क्या होगा, नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अरे ये इतना अच्छा प्रवचन दे रहा है, ये भी अभी सीख गया भागवत और गीता, ये भी अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहा है और लोग इसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में आनंद होना चाहिए, वाह कितनी अच्छी बात है, ये भी बात कितने जल्दी से भक्ति में आगे बढ़ गया है, ये भी देखो कितनी सुंदर ढंग से भगवान के का प्रचार कर रहा है, भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहा है। तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए हमारे मन के अंदर, या किसी भी भक्ति के क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक हो भौतिक हो, किसी के प्रगति से हमें कभी भी हृदय में बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि अच्छा लगना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से हम ये सब व्यवहारिक बातें, प्रैक्टिकल बातें सीख सकते हैं। जो बातें भागवत में बताई गई हैं, उनका वास्तव में जो एक आचरण हम चैतन्य चरितामृत में देख सकते हैं, महाप्रभु के भक्तों के लीलाओं में हम देख सकते हैं। तो महाप्रभु आकर्षित हुए महाराज प्रताप रुद्र के गुणों को देखकर, उनकी नम्रता को देखकर, और सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए। उसी प्रकार से जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन की ओर जा रहे थे, वृंदावन नहीं गए, रामकेली नाम के स्थान में गए, और वहां पे दबीर खास और साकर मल्लिक नाम के व्यक्ति रहा करते थे, और वो वैसे सारस्वत ब्राह्मण कुल के जन्मे हुए थे, परंतु एक बादशाह के सेवा में रहकर वो प्राय यवन हो गए थे, इसलिए उनके नाम भी बदले हुए थे, दबीर खास और साकर मल्लिक। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब हम महाप्रभु का दर्शन कर पाएंगे। तो जब बादशाह को खबर मिली कि ऐसे कोई मसीहा आ रहे हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, और इनके पीछे हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं बिना कोई दक्षिणा लिए हुए, ऐसा नहीं कि वो कुछ पैसा दे रहे हैं मेरे पीछे चलो, नहीं, जैसे कि आजकल चुनाव में देखा जाता है ना, मैदान भर भर के लोग आते हैं, ट्रक में भर भर के लोगों को ले आते हैं, उनको कुछ कुछ दे दे के चलो तुम भी आओ। तो बादशाह को आश्चर्य हुआ, ऐसे पैसे दिए बिना ये लोग कैसे आ गए इनके पीछे, तो ये कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए। तो फिर वहां दबीर खास और साकर मलिक और उनके साथियों को थोड़ी चिंता होने लगी कि महाप्रभु के प्रसिद्धि को देखकर यहां इनको द्वेष हो गया तो फिर तकलीफ होगी, फिर कोई ना कोई तकलीफ देंगे महाप्रभु को, कोई कष्ट उनको देंगे। तो छात्री करके एक व्यक्ति थे दरबार में, उनको बुलाया बादशाह में, ये कौन है, ये आपके मसीहा हैं, कौन है? नहीं नहीं वो तो कोई नहीं है, वो तो यूं ही बस ऐसे आए हैं जाए हैं, वो चले जाएंगे। तो जानबूझकर उन्होंने ऐसे बात की क्योंकि उनको डर था यदि ज्यादा प्रशंसा करेंगे चैतन्य महाप्रभु का तो हो सकता है बादशाह, हालांकि इस समय प्रशंसा कर रहा है लेकिन क्या जाने आगे चल के उसके मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई तो महाप्रभु को नुकसान करने के लिए भी सोच सकता है। तो फिर बादशाह और काजी दोनों फिर ठीक ठाक शांत हो गए। आगे चल के उन्होंने दबीर खास साकर मल्लिक से भी पूछा और उन्होंने बताया कि ये तो साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि यहाँ पर प्रकट हुए हैं कृष्ण भक्ति सबको सिखलाने के लिए। फिर बीच रात में जब कोई नहीं था, सब लोग सो रहे थे, चुपके से साकर मल्लिक को दबीर खास जो कि मंत्री थे बादशाह के, वो अपने घर से निकले और चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर नित्यानंद प्रभु थे, हरिदास ठाकुर थे, और उन्होंने देखा कि ये दो आए हैं, ये दो भाई आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर वो चैतन्य महाप्रभु के पास उनको ले गए, और प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत अच्छी बातें कहने लगे। परंतु इन दोनों ने, दबीर खास और साकर मल्लिक ने, अपनी पहचान कैसे कराई? उन्होंने ये नहीं कहा हम संस्कृत पंडित हैं, हम अरबी फारसी भी जानते हैं, और हम मंत्री हैं, हम हमारे पास धन इतना है, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ था, ऐसे सब उन्होंने नहीं कहा। जाके सीधे क्या बोलने लगे, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पवन जय जय महाशय, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जो कि दयामय है, जो पतित पावन है। और अपना परिचय देने लगे, नीच जाति नीच संगी कोरी नीच काज, तोमर अग्रते प्रभु कोहिते वाशी लाज। हम तो नीच जाति के हैं, नीच संगी हैं, और काज हम काम जो है वो भी नीच नीच श्रेणी का काम है। तुम्हार अग्रते प्रभु कोहिते वाशी लाज, और आपके सामने भी खड़े होने में हमें लज्जा होती है कि हम इस योग्य नहीं है कि आपके सामने हम यहाँ आए।
पतित पावन हेतु तुमर अवतार, आमा बाई जगते पतित नहीं।
आपका नाम पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने के लिए आप अवतार लिए हैं, तो इसलिए आपको ये विचार करना चाहिए कि हमारे जितना कोई पतित इस जगत में नहीं है।
जगाई मधाई दुई कोरिले उद्धार, तहां उद्धारिते श्रम नहिल तुमार।
जगाई मधाई जैसे दुष्ट व्यक्तियों का उद्धार आपने किया, ऐसे उद्धार करते समय आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ा, आपको कोई कठिनाई नहीं हुई। और अभी ये जगाई मधाई के अच्छे गुणों को देखने वाले हैं दबीर खास और साकर मल्लिक।
ब्राह्मण जाति तार नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं कोरे नहीं नीचे कुपर।
अरे जगाई मधाई, देखो ब्राह्मण जाति तार, वो तो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए, नवद्वीप में घर था उनका जो कि तीर्थ स्थान है, बहुत पवित्र भूमि है। नीच सेवा नहीं करे, जैसे हम लोग अभी नीच व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं, कम से कम जगह मधे वैसे तो नहीं कर रहे थे। न ही नीचे कुपर, न ही कोई ऐसे नीच व्यक्तियों के वो यंत्र बने थे। हम लोग अभी ऐसे यवनों की सेवा में लगे हुए हैं, ये हमारा स्थान है। जैसे कि गोविंद दास कविराज कहते हैं ना, विफल से बिनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लग लागी रे। कि केवल चपल सुख के लिए मैंने कृपणों की सेवा की है, विफल निष्फल मेरी सेवा है। तो उसी प्रकार से दबीर खास और साकर मल्लिक कह रहे हैं कि हम तो ऐसे नीच जाति के लोगों के नीच लोगों की सेवा करते आए हैं, हमारे कार्य भी ऐसे हैं। जगाई मधाई तो ऐसे नहीं थे, उनका जन्म ऊंचा था, उन्होंने कभी ऐसे यवन आदि के लोगों की सेवा स्वीकार नहीं की, उनके यंत्र वो उनके निमित्त नहीं बने। वो
सब एक दोष तार होए पापाचार, पाप राशि दोहे नामा भाषे ही तुमार।
जगाई मधाई की केवल एक दोष था कि वो पापाचारी थे, पाप से वो आसक्त थे, लेकिन नामाभास से ही आपके पवित्र नामों के आभास मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जगाई मधाई का उद्धार करना ये कोई कठिन बात नहीं थी आपके लिए।
जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन।
हम दो कोटि कोटि जगाई मधाइयों से निकृष्ट हैं, अधम हैं, पतित हैं, पापी हैं हम दोनों।
म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी कोरी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमर संगम।
हम तो म्लेच्छ जाति के हैं, म्लेच्छ सेवी हैं, अर्थात म्लेच्छों की सेवा करते हैं, और हमारे कर्म भी म्लेच्छों के समान ही हैं। गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमर संगम, ये लोग गाय के विरुद्ध हैं, ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं, वैष्णवों के विरुद्ध हैं, और ऐसे लोगों के संग में रहकर हम इनकी सेवा कर रहे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने पतित हैं। और इस प्रकार से अपने दांतों में तृण लगाकर पूरा दंडवत प्रणाम किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने, और ऐसे और बहुत बोलते गए, अपने आप को तुच्छ इस भाव से प्रस्तुत करने के लिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु, ये काफी लंबा वार्तालाप है क्योंकि इसके लिए और ज्यादा समय जाएगा, इसलिए हम पूरा वार्तालाप नहीं पढ़ेंगे। तो महाप्रभु ने उनकी बातें सुनी और सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उनका करकमल जो है उन्होंने उनके ऊपर रख दिया और कहा कि दबीर खास, आपका नाम आज से होगा रूप, श्री रूप, और साकर मल्लिक, आपका नाम आज से होगा श्री सनातन। तो ये दो आगे चल के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जैसे ही महाप्रभु ने अपने करकमल उनके सर के ऊपर रखे तो तुरंत उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल लिए और अपने सर पे रख लिए। और सारे भक्त जो वहां उपस्थित थे वो हरि बोल की ध्वनि करने लगे और बहुत प्रसन्न हुए कि इनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा हुई है। और प्रभुपाद जी फिर से वही बताते हैं, दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे हरि हरि बोले सब आनंदित मने। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, जब भक्त गण ने देखा कि महाप्रभु की इतनी असीम कृपा इन दो भाइयों के ऊपर हुई है तो हरि हरि बोलकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए मन में। फिर से यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि द्वेष भावना को त्याग कर हमें अन्य भक्तों के भक्ति के प्रगति में हमें और आनंद लेना चाहिए। तो ये भक्त समाज के लिए एक सूत्र है, भक्त समाज में हम सबको कैसे साथ में रहना चाहिए, किस सहयोग की भावना से, एक दूसरे की मदद करने की भावना से रह के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। गोलोक वृंदावन में जाने से भी यही दिखाई पड़ता है। श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों को आगे करती हैं ताकि वो कृष्ण के साथ चले जाएं। अन्य गोपियां श्रीमती राधा रानी को आगे करते हैं कि नहीं आप चले जाओ कृष्ण के पास। इस प्रकार से एक स्पर्धा होती है कि किसको ज्यादा कृष्ण की कृपा मिले। तो भक्तों के संग में, भक्त समाज में हमारे भी ये विचार ऐसे होने चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष मन में आए भी तो भगवान के सामने यह आना चाहिए, कहना चाहिए कि ऐसे भावना लेकर आपके सामने खड़े होने के लिए हम योग्य नहीं हैं, जैसे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के सामने कहा। हमें भी भगवान के सामने कहना चाहिए कि ये जो द्वेष की बीमारी है हमारे हृदय से आप उखाड़ के आप फेंक दीजिए, और अन्य भक्तों के जो सद्गुण हैं, उनके अच्छे गुण हैं, उनका एहसास हमारे हृदय में करा दीजिए और उनकी भक्ति के प्रगति में हमें आनंद लेने के लिए वो बुद्धि दीजिए, और मुझे ऐसे वृत्ति दीजिए कि मैं उनकी सेवा करूं, कि मैं उनके सेवक बनूं, जिससे कि वो सब अपने भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहे। ये वास्तव में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया।